अरुणिमा बेड पर किसी तकिया की तरह सिकुड़कर बैठी हुई थी। अरुणिमा को बेड पर रखकर आस्तिक सीधे अलमारी की तरफ जाता है और वहां से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। वो बॉक्स लाकर बेड के साइड टेबल पर रखता है और अरुणिमा को बेड पर लिटा देता है। अरुणिमा आस्तिक के स्पर्श से ही कांप रही थी। आस्तिक ने धीरे से एक ऑइंटमेंट निकाला और थोड़ी सी दवाई उसने अपनी फिंगर में लेकर अरुणिमा के जख्मों पर लगाना शुरू किया। अरुणिमा हैरान नजरों से आस्तिक को देखे जा रही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये इंसान करना क्या चाहता है। कल रात तो उसी ने अरुणिमा को इतने जख्म दिए हैं और अब खुद ही उन पर मरहम भी लगा रहा है। जब आस्तिक उसे गोद में उठाकर बेड पर ला रहा था तब अरुणिमा एक पल के लिए घबरा गई थी, ये सोचकर कि आस्तिक फिर से उसका बलात्कार करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अरुणिमा के जख्मों पर मरहम लगाने के बाद आस्तिक क्लोजेट से एक ढीली सी नाइटी लेकर आता है और उसे अरुणिमा को पहना देता है। दोपहर तक अरुणिमा अपने कमरे में थी। आस्तिक ने सबको मना किया था कि कोई भी अरुणिमा के पास नहीं जाएगा और ना ही कोई भी उसे परेशान करेगा। दोपहर को अरुणिमा जब नींद से जगाती है तो खुद को कमरे में अकेला पाती है। उसे इस बात की तसल्ली थी कि इस समय वो कमरे में नहीं है। अरुणिमा धीरे से उठती है और बाथरूम में जाकर फ्रेश होती है, लेकिन अब अरुणिमा अपने लिए फैसला ले चुकी थी। वो ड्रेसिंग टेबल पर बैठी हुई थी और अपने बालों को कंघी करते हुए आईने में अपने अक्स को देखकर कहती है, माँ कहती है शादी का रिश्ता निभाने में पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। रिश्ता टूटने की 100 वजह होने के बाद भी निभाने की बस एक वजह काफी होती है, पर मेरे पास तो वो वजह भी नहीं है। मैं किस लिए इस रिश्ते को निभा रही हूँ जिसमें प्यार, इज्जत, सम्मान कुछ भी नहीं है। बस अब बहुत हो गया। मेरी तरफ की ये आखिरी हद थी जो मैंने तोड़ दी है। मैं इस जानवर की कैद से भाग जाऊंगी। मैं इसके हाथों की अब और कठपुतली नहीं बन सकती हूँ। मुझे नहीं रहना है इस मॉन्स्टर के साथ। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बहुत दूर, अपनी माँ को लेकर, अपनी बहन को लेकर, एक ऐसी जगह जहाँ पर यह इंसान हम तक कभी ना पहुँच पाए। अरुणिमा ने अपने हाथ के लिए फैसला कर लिया था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा था कि वो आस्तिक को छोड़ने का फैसला कर रही थी। अरुणिमा अपने कमरे से निकलती है और सीधे हॉल में आती है। इस वक्त घर पर कोई भी नहीं था। आस्तिक सुबह ही घर से जा चुका था। पृथ्वी दिल्ली गया हुआ था। प्रणाली इस वक्त अपने फैशन हाउस में थी और कीर्ति कॉलेज में। सिर्फ अमृता ताई हैं जो अपने कमरे में थीं, लेकिन वो अरुणिमा से नजरें नहीं मिल पा रही थीं। कल रात वो अरुणिमा की मदद करना चाहती थीं पर उन्हें रोक दिया गया और इसी वजह से वो अरुणिमा से नजरें मिलाने से डर रही थीं, क्योंकि जिन नजरों से अरुणिमा उन्हें देख रही थी वो साफ तौर पर अपने लिए रहम मांग रही थी। अरुणिमा सीधे महल के मुख्य द्वार पर आ जाती है, लोहे का एक बड़ा सा दरवाजा जो उसके लिए हमेशा से ही बंद कर दिया गया था। शादी के बाद से अरुणिमा इस दरवाजे से बाहर नहीं गई थी। आस्तिक ने उसे इस महल के अंदर हर चीज ला कर दी थी। उसकी जरूरत का हर सामान उसके पास था, सिर्फ नहीं थी तो आजादी और इज्जत। अरुणिमा उस बड़े से दरवाजे के पास पहुंचती है कि तभी दो अंगरक्षक जाकर अरुणिमा को रोकते हुए कहते हैं, रानी साहिबा आप बाहर नहीं जा सकती हैं। अरुणिमा गुस्से में उन दोनों को देखते हुए कहती है, मेरे रास्ते से हटो। पर वो दोनों अपना सर झुकाते हुए कहते हैं, माफ करें रानी साहिबा, पर ये राजा साहब का हुक्म है कि हम आपको महल से बाहर कदम न रखने दें। जाने दो उसे, उसे जाने दो, अरुणिमा के पीछे से ये आवाज आती है। अरुणिमा हैरानी से पीछे पलट कर देखती है तो सामने अमृता ताई खड़ी थी। अमृता ताई को देखकर वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं, सॉरी मैडम, लेकिन राजा साहब का हुक्म है कि हम रानी साहिबा को महल से बाहर न जाने दें। अमृता ताई उन दोनों गार्ड्स के सामने आती हैं और उन्हें घूरते हुए देखकर कहती हैं, तुम्हारे राजा साहब को मैं संभाल लूंगी, दरवाजा खोलो और इसे बाहर जाने दो। लेकिन वो दोनों गार्ड्स अभी भी सर झुकाए वहां पर खड़े थे। अमृता ताई ने गुस्से में उन दोनों को देखते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है या नहीं? जानते हो ना मैं कौन हूं। वो दोनों गार्ड्स घबरा जाते हैं और जल्दी से हां में सर हिलाते हैं। उनमें से एक गार्ड जाता है और महल का मुख्य द्वार खोल देता है। दरवाजा खुलते ही अरुणिमा के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो पलटकर पहले अमृता ताई को देखती है जो मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देखकर कहती हैं, जाओ आजाद हो जाओ इस कैद से। अरुणिमा जल्दी से अमृता ताई के पास आती है और उनके गले लग जाती है। अरुणिमा फूट फूट कर रोती है और कहती है, शुक्रिया मुझे इस नर्क से आजादी दिलवाने के लिए। अमृता ताई अरुणिमा को खुद से अलग करती है और उसके आंसू पूछते हुए कहती हैं, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, पर समझ लो मेरे हाथ में सिर्फ इतना ही है। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने कुछ तो किया तुम्हारे लिए। अच्छा ही है कि तुम इस सोने के पिंजरे से आजाद ही रहो। जाओ, अपने घर जाओ, अपनी माँ के पास। उन्हें सारी बात बताओ। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। अरुणिमा रोते हुए भी मुस्कुरा रही थी और उसने हाँ में सर हिलाते हुए अमृता ताई के पैर छुए और महल के गेट से बाहर निकल गई। आज पूरे 1.5 महीने बाद वो बाहर का नजारा देख रही थी। ताजी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। सांस तो वो महल के अंदर भी ले रही थी, लेकिन उस सांस में भी एक घुटन थी। महल के दरवाजे के बाहर अरुणिमा को ऐसा लग रहा था कि वो सच में जिंदा है और जिंदा रहने के लिए सांस ले रही थी। अरुणिमा ने एक नजर पलटकर उस महल को देखा, जो महल उसके लिए एक जेल के बराबर था। उसने अपनी आंखों में नफरत और गुस्सा लिए अपनी आंखों से बह रहे आंसू को बेदर्द तरीके से पोंछते हुए कहा, अलविदा आस्तिक रायचंद, अब मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं हूं। और उसके बाद अरुणिमा ने दोबारा पलटकर उस महल की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वो अपने उस बुरे सपने को फिर से नहीं देखना चाहती थी। वो एक बार अपने घर के रास्ते के लिए निकली तो बस चलती गई। महल से निकलने से पहले अरुणिमा ने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया था, ना ही उसने पैसे लिए थे और ना ही कोई कीमती गहना पहना था। जब वो इस महल में आई थी तो उसने बेशकीमती गहने पहने हुए थे, पर इस महल से जाते वक्त वो अपने साथ सिर्फ दर्द और तकलीफ ही लेकर जा रही थी। जंगल के बीचों बीच एक खंडहर में, वहां पर किसी इंसान के तेज चीखने की आवाज आ रही थी। वो इंसान जंजीरों से बंधा हुआ था और उसके शरीर से खून की धार बह रही थी। वो खुद को जंजीरों से आजाद करवाने के लिए जंजीरों को खींच रहा था। वो जितना खुद को खींचता, जंजीर उतनी कसती चली जाती। 3 दिन हो गए थे इस इंसान को इस जगह पर बंद किए हुए। उसे इन 3 दिनों में ना तो खाना दिया गया था और ना ही पानी दिया गया था। वो जोर से चिल्लाते हुए अपने लिए जान की भीख मांग रहा था, पर वहां पर खड़े लोग शायद गूंगे और बहरे थे। उन्हें अगर कुछ सुनाई देता था तो सिर्फ अपने मालिक का हुक्म।